ओम शांति। तो आज भट्टी का अंतिम दिन और कल से पहला दिन। वास्तव में जीवन ही भट्टी है। भट्टी का आयोजन होता ही इसलिए है कि हम जीवन की वास्तविकता से परिचित हो जाएं कि वास्तव में जीवन क्या है। उसके लिए अलग अलग तरीके से हमें स्वयं के अस्तित्व की पहचान मिलती है। मोटे तौर पर तो पहचान हमको मिली, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। लेकिन भट्टी के दौरान जो तपस्यामय वातावरण में हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, उसको आत्मा स्पर्श करती है, महसूस करती है। उसके लिए हमारी मानसिकता, हमारा मानसिक धरातल भी वैसा होना चाहिए। भट्टी में आने से पूर्व सभी के मन में ये तो विशेष एक इच्छा रहती है कि भट्टी के बाद हमारा विशेष परिवर्तन होगा। हम जो पहले थे वो बाद में नहीं, उससे बहुत आगे चले जाएंगे। और ये सभी अनुभव भी करते होंगे अगर पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, मनोयोग के साथ अगर हमने वो अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से हमारे संस्कारों में बदलाव आता है। सबसे बड़ी साधना है संस्कारों का परिवर्तन, और हर एक के व्यक्तिगत संस्कार अपने अपने हैं। सुख और दुख का आधार भी हमारे संस्कार ही होते हैं। जब हमें श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति रहती है तब तब सुख और शांति की फीलिंग का अनुभव होता है, और जब पुराने संस्कार अर्थात मध्यकालीन संस्कार, कलयुगी संस्कार उछाल मारते हैं, तूफान मचाते हैं, हलचल लाते हैं, तो चेतना को झकझोर देते हैं, अवस्था दुलायमान हो जाती है। ज्ञान योग से परे होने की इच्छा होती है तो सारा खेल हमारे स्वयं के संस्कारों के ऊपर ही है। इसलिए बाबा कहते अपने आदि और अनादि काल के संस्कारों को बार बार स्मृति में लाओ। हम ज्ञान तो सुनते रहते हैं लेकिन वो ज्ञान प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में समा जाए, जिसको बाबा कहते सोमान का नशा। सोमान सुनते तो हम बहुत हैं लेकिन जो नशा उसका अनुभव होना चाहिए, उसका जो रस अनुभव होना चाहिए, उसके अनुसार जो स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए, उसमें कहीं कहीं दूरियां बनी रहती हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं कि हम सोमान को केवल रिपीट तो करते हैं, कभी कभी नशा भी चढ़ता है लेकिन वो नशा स्थायी नहीं रहता है। कई दफा परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, कोई छोटी मोटी बातें आती हैं वो भी प्रभावित कर देती हैं। तो जब तक हमने सोमान को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वयं के अंदर समाया नहीं, उस सोमान का चिंतन नहीं किया, स्वयं का चिंतन, तब तक वो सोमान हमारी नसों में समाता नहीं है, ऊपरी ऊपरी सतह पर काम करता है। हम जिस भी समय जहां भी हों, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कहीं शोर शराबा हो, किसी भी प्रकार की हलचल हो, लेकिन स्थिति हमारी एक रस हो। पुरुषार्थ तो वही रहता है सभी का, उसके लिए सोमान गहराई से हमारा अपना बन जाए, हमारे अपनी प्रॉपर्टी बन जाए। वो जैसे स्थूल में भी प्रॉपर्टी होती है, अपनी प्रॉपर्टी का नशा अलग ही होता है, ऐसे ही हमारी ये सूक्ष्म प्रॉपर्टी है और ये अविनाशी प्रॉपर्टी है। जब विनाशी प्रॉपर्टी का नशा रहता है तो अविनाशी प्रॉपर्टी का नशा क्यों नाश हो जाता है, सोचने विषय है। क्यों अविनाशी स्मृति नहीं रहती है, जबकि वो तो आत्मा के अनादि आदि काल के संस्कार ही हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उस पर गहराई से कार्य नहीं किया है, उसको अपने मन में समाया नहीं है। अटेंशन का पैरा, आज ही था ना मुरली में प्रधान स्लोगन में, बुद्धि पर अटेंशन का पैरा, जो पहरेदार हमको खड़े करने चाहिए अटेंशन और चेकिंग के, वो कहीं ना कहीं सोए रहते हैं। इसलिए बीच बीच में मायावी संस्कार, मायावी विचार, मायावी संकल्प वो अपना काम करते रहते हैं, आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं, और उसमें फिर खुशी भी होती है, क्योंकि बाबा ने कहा तुमको एक आदत नहीं होनी चाहिए, और वो आदत लंबे समय से लगभग होती है। और वो कौन सी आदत है, आई की मुरली में था एक शब्द, अगर वो छूट जाए हाई जंप दे देंगे। और वो कौन सी आदत है, बाहर तो नहीं हम जाते हैं लेकिन वो सबके पास है, सिनेमा। हाँ, बाबा ने उसको दूसरे शब्दों में क्या बोला आज, बाइस्कोप ही हमारे पास चल के आ गया हुआ है। बड़ा खतरनाक और घातक है वो। साधन तो बढ़ रहे हैं लेकिन उन साधनों का भी सुख लेना है, इग्नोर नहीं करना है। वो साधन भी हमारी साधना को प्रखर कर दें लेकिन वो आधार ना बन जाएं। अगर वो हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो वाइस के संस्कार, चाहे वो नाटक के रूप में, ड्रामा के रूप में, रील के रूप में, जोक के रूप में, छोटी छोटी आदतें हैं वो हमारी एनर्जी को खींच लेती हैं, नष्ट कर देती हैं, सोमान की सीट से उतार देती हैं। वो नशा चढ़ेगा कहाँ, सोमान का नशा ज्ञान का चिंतन किया होगा थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जैसे हम उन चीजों के जो हमारे काम की नहीं है उनके संग में आते हैं तो वो हमारी सारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं और अंदर में एक गिल्ट कॉन्शियस का भाव पैदा हो जाता है, अंदर में एक द्वंद्व चलता रहता है, हमारे ही अपने अलग अलग व्यक्तित्व अंदर में लड़ाई करना चालू कर देते हैं। कर्म योगी स्थिति, कर्म भोगी स्थिति, योगी भोगी, वो ही अंदर में युद्ध चलता रहता है। केवल एक संकल्प की दूरी है, एक सेकंड का खेल होता है, एक सेकंड में ही सारी की कमाई चट। तो ऐसे पथ पर बाबा ने हम सबको सिलेक्शन किया है, जहां कदम कदम सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। ये मार्ग जितना सहज है उतना और ही सहज है, कठिन तो हम बना देते हैं। आज बाबा ने कहा ना, तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों नहीं होना है, उसके आगे वाला सेंटेंस था, तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि बहुत सहज पढ़ाई है, इससे सहज पढ़ाई कोई और है ही नहीं। यहां तो कोई ऐसा मैथमेटिक्स है नहीं है कि हम कोई ऐसा कोई सम सॉल्व करना है, कोई साइंस का फार्मूला तैयार करना है, या कोई किसी तरह का अनुसंधान करना है। ये पढ़ाई सबसे सहज है, लेकिन इस पढ़ाई के लिए पात्र भी हमारा वैसा ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कैसी है, एकदम प्योर है, पवित्र है ये। बाबा ने कहा अगर बायोस्कोप देखने की आदत है तो, उसके अगला वाला सेंटेंस था बड़ा खतरनाक था, अगर किसको बायोस्कोप देखने की आदत है तो। हाँ जी, हाँ वो पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा, वो अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। अब हम अपनी अपनी जांच कर सकते हैं, भले स्थूल में अपवित्र ना बने लेकिन कल्पनाओं में, स्वप्न में, अंदर ही अंदर हमारे संकल्पों में तूफान मचता रहेगा सूक्ष्म रूप से। लेकिन जो हो गया सो हो गया, आज से फिर से नया संकल्प लेना है, अभी से नया संकल्प लेना है, क्योंकि जो हमारे हाथ से निकल गया उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उससे हमने पाठ तो पढ़ा ना, कम से कम एक नया अनुभव हमने हासिल किया है कि उससे हमारी सारी की कमाई चट हो गई, अनुभव तो आ गया ना एक। इसलिए बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि ये याद की यात्रा पर हो, और यात्रा में उतराई चढ़ाई तो आएगी आएगी। अब जहां चढ़ाई आ रही है हम ऐसे सोच थोड़ा सकते हैं चढ़ाई क्यों आई है, वो तो आएगी आएगी। अब जिसमें चलने की ताकत होगी वो तो चढ़ जाएगा, हाई जंप दे देगा, और नहीं होगी उसको उसकी स्पीड कम हो जाएगी, चलेगा तो वो भी लेकिन स्पीड कम होगी। इसलिए अटेंशन और चेकिंग बहुत जरूरी है। तो कुछ आदतें हैं जिन पर हमें स्वयं ही कार्य करना है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, बड़ी बातें नहीं है, जो बड़ी स्थितियां हैं जिनको हमें उपलब्ध करना है, हासिल करना है, कर्मातीत, बाप समान, साक्षी दृष्टा, ये बहुत सहज हैं। लेकिन उसके मार्ग में आने वाले जो छोटे छोटे विघ्न हैं, जो ऑब्स्टेकल हैं, उन पर थोड़ा सा अटेंशन देने की आवश्यकता है। और बाप समान बनने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हम हैं ही हैं, केवल जो व्यर्थ का आवरण है उसको हटाना है, क्योंकि भगवान ने हमको चुना हो तो है ही है, तभी तो चुना ना उसने, अगर हम नहीं होते तो थोड़ा चुनता है, तो वो तो हम हैं ही हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप अंडरस्टैंडिंग, उसका एक्सपीरियंस अनुभव एक्सेप्ट करना है, और ऐसे सोमान में स्थित रहने से छोटी मोटी व्यर्थ की बातें अपने आप ही गिर जाती हैं। जैसे ब्रह्मा ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही श्री कृष्ण हूं, तो निशा अपने आप चढ़ गया। अगर बाबा हमको आके अभी कहे कि तुम श्री कृष्ण बनने वाले हो तो हम नहीं मानेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो तो बाबा ही बनेगा, बाबा तो बनेगा, साथी भी तो होंगे ना साथ में उसके। तो हमारी योग्यताएं, जो विशेषताएं हैं, एबिलिटी हैं, सिफ्तें हैं जो हमारे अंदर, उन पर भी चिंतन चाहिए। हम उनके बारे में ना सोचते हुए अपनी कमी कमजोरियों की जंजीरों में बंधे रहते हैं, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का दुख का रोना रोते रहते हैं। इसलिए बाबा ने आज कमजोरियों के लिए भी बाबा ने बात कही, कौन सी कही, लौकिक में लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त रहने वाले, क्या बाबा, हाँ। अब बीच में विस्तार हुआ है, लेकिन अपने चिंतन करना है उसके ऊपर कि कौन कौन सी, ऐसा नहीं कि कमजोरियों को भी हमको चिंतन नहीं करना है, चिंतन करके उनको निकालने का भी प्रयास नहीं करना है, निकल वो अपने आप ही जाएंगी, लेकिन रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मेरे अंदर भी है और मुझे निकालनी है। और उसके लिए बाबा ने जो भी दवा दारू दिया हुआ है, इंजेक्शन टैबलेट दी हुई है, उसका समय समय पर उसका उपचार उसका करते रहना है, उसको लेते रहना है। डॉक्टर ने दवाई तो दे दी लेकिन हमने खाई नहीं है, अब बीमारी ठीक होगी कैसे फिर। बाबा रोज हम इंजेक्शन देते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं, कितने शक्तिशाली, बाबा कहते तुम्हारे ज्ञान की तलवार में याद का जौहर चाहिए। तो खाली याद केवल बैठ के याद करना याद नहीं है, ज्ञान का गहन गहरा चिंतन भी हमारी याद को शक्तिशाली बनाता है। जिसके हम ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं तो याद तो उसकी तरफ हमारी जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमको याद है तो उस सेवा में भी याद समाई हुई है, क्योंकि बैठे बैठे दो ढाई घंटे के योगी थोड़ा नहीं है। बाबा ने कहा है अंतिम अवस्था है निरंतर योगी निरंतर सेवादारी, तो उसका प्रैक्टिस तो पहले से चाहिए ना, निरंतर कॉन्स्टेंट। इसलिए बाबा कहते ज्ञान की बूंदें टपती रहनी चाहिए। तुम हो ज्ञान की बुलबुल, तुम ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरे से करनी है, कोई नहीं मिलता जरूरत नहीं है, अपने आप से करनी है। ये भगवान ने जो मुझे सवेरे सवेरे खजाना दिया है, अविनाशी निधि दी है, खजाना दिया है, वो मुझे कितना याद है। उसको बार बार रिवाइज करते रहना। काली था मुरली मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है, जो भी ज्ञान की पॉइंट्स मिलती है उसे रिवाइज करते रहना है। तो क्या हुआ उसके, हमारा मन बुद्धि स्वच्छ हो जाएगा। सफाई अभियान चलाना अपने अंदर ही, दूसरा कोई चलाने के नहीं आएगा। केवल बाबा मार्ग दिखाने आता है, और माफी भी होती नहीं है, आज ही था या कल भी मुरली में माफी तो होती नहीं है। हाँ, सच सुनाने से हल्का हो जाएंगे, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं की रिस्पेक्ट करना सीखनी है, सेल्फ लव चाहिए। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए स्वयं से प्यार करना सीखना है। जैसे भगवान मुझे प्यार करता है उसी तरह से मुझे भी स्वयं से प्यार करना है। और भगवान को प्यार किस चीज से है, उसको देह से तो कोई प्यार ही नहीं है, उसको किससे प्यार है, आत्मा से प्यार। लेकिन कौन सी आत्मा से प्यार है, एकदम प्योर आत्मा से। लेकिन हम तो कौन हैं, हम प्योर आत्माएं हैं, हम तो पतित हो गए हैं, हम बिल्कुल प्योर आत्मा एकदम 100%, 1.1% भी कम नहीं। तो उसको प्यार उसी से होगा जो उसके जैसे संस्कार होंगे, जो बिल्कुल प्योर है, जो उसके ज्ञान से प्यार करता है, जो उसकी चीज को महत्व देता है। अगर मैं आपसे प्यार करूं तो आप भी प्यार तभी करेंगे जब मैं आपको महत्व दूंगा। अगर मैं आपको महत्व नहीं दे रहा हूं तो कौन प्यार करेगा। तो बाबा की हर चीज से प्यार होना चाहिए, उसके ज्ञान से प्यार, उसकी धारणाओं से प्यार, जो हमको धारणा है, जो हमारे श्रृंगार है, जो हमारी अविनाशी पूंजी है, संपदा है, वो हमारे संस्कार हैं, हमारी ओरिजिनल नेचर है वो। तो उसको हमको अप्लाई करने के लिए मेहनत क्यों फिर, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया हमने वो। बाबा कहते तुम संपूर्ण पवित्र आत्मा हो, लेकिन उसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के बाद ही तूफान तो आएंगे, लेकिन उसके लिए बाबा ने ये बोला दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि सोमान रूपी गोली खाई है तो बीमारी तो बाहर निकलेगी। और उसके लिए बाबा ने कहा ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, तो उन संकल्पों से भी घबराना नहीं है। इसलिए ब्राह्मण लाइफ में किसी भी हालत में किसी भी सूरत में दिल शिकस्त नहीं होना है। हाथ सिर पर रख के बैठ नहीं जाना कि मेरे से होता नहीं है, हमारे से ही होगा वो। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को हर लास्ट बच्चे से भी प्यार है, हर एक बच्चे से प्यार है, लेकिन लास्ट वाला बच्चा भी उससे भी प्यार है उसको, क्योंकि सिलेक्शन किसकी है, वो स्वयं भगवान की सिलेक्शन है, कोई इंसान की सिलेक्शन थोड़ी नहीं है। हम भले किसी में कमी कमजोरियां देखते रहते हैं, दूसरों के बारे में उसी कमी कमजोरी के आधार पर हमारा एटीट्यूड भी वैसा दिन प्रतिदिन बदलता जाता है, लेकिन बाबा किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि मेरे तो नैनों का नूर बच्चा है, और हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही है। कितना डिफरेंस हो गया, हमें भी वही एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, वो है ही है, हर एक की विशेषताओं को देखने का चश्मा निरंतर पड़ा रहे। कल ये मुरली पढ़े थे, बाबा ने कहा किसी की कमजोरी को, वो जो बहुत पुरानी है 20 साल पहले किसी ने सुनाई होगी, अगर उसको भी दोबारा से चिंतन किया वो भी पाप है। बीती हुई बात का चिंतन करना भी पाप है, भले वो अपनी ही बीती हुई बातें हैं। जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि बीत जो बीत गया उसको क्या कहते हैं, पास्ट, भूतकाल। अब भूत को चिंतन करेंगे तो क्या होगा, भूत ही आएंगे। गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे तो क्या होगा, दुर्गंधी आएगी। तो जो आज से जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए हर समय नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए दिन के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ, नई सुबह के साथ, नया सवेरा चालू करना है, नई दिनचर्या चालू करनी है। उसके लिए चिंतन की बहुत गहरी आवश्यकता है। और चिंतन करना बड़ा आसान काम है, जिसको मुश्किल समझ लेते हैं बहुत ही आसान काम है। वो कैसे आसान काम है, चिंतन कैसे आसान काम है? हाँ जी, हाँ वो ठीक बोला, उसके लिए फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता और समय भी अच्छी तरह से पास हो जाता है, कानों को भी रस मिलता है, दूसरे की निंदा चुगली कर कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आदत पड़ी है ना, पुराने संस्कार, माया भी संस्कार। तो माया भी चाय पानी पीने आती है, वो भी घंटों घंटे तक हमारे पास बैठी रहती है। माया तो वास्तव में एक हमारी बेहोशी की अवस्था है, हमारी कमजोरी, कमजोर संकल्पों की रचना है, जिसको अब रचना रची है तो पालना तो उसकी करनी पड़ेगी। घर में माँ बाप के जैसे तैसे बच्चे हैं, पालना तो उनको करनी पड़ेगी ना। तो जो भी हम कमजोर संकल्पों की, व्यर्थ संकल्पों की, मायावी संकल्पों की रचना रचते हैं तो पालना तो उसकी हमको ही करनी पड़ेगी। इसलिए सवेरे सवेरे या चलते फिरते टाइम के बंधन से परे चले जाना है, निरंतर शक्तिशाली समर्थ संकल्पों की रचना करनी है। जो भी सोमान हमको मिले हैं उन सोमान को थोड़ा श्रृंगार करना है, नए तरीके से उनको क्रिएट करना है। जरूरी नहीं है कि जो बाबा ने जो शब्द हैं वो के एज इट इज शब्द याद करने हैं, वो तो बाबा हमारे आगे एक एग्जाम्पल रखते हैं, उसके आगे काम तो हमको करना है। जैसे मैथमेटिक्स होता है उसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, इस सम को ऐसे सॉल्व करना है, तो बाबा ही हमारे सामने एग्जाम्पल रखते हैं कि तुमको कर्म क्षेत्र में रहते हुए इस तरीके से व्यवहार में आना है, कमल फूल समान बनना है, कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल समान रहना है। ऐसा तो नहीं है कि कलयुग में रह रहे हैं और सब हमारे साथ स्वर्ग जैसा व्यवहार करेंगे, स्वर्ग जैसा व्यवहार तो हमको उनके साथ करना है, उनको हमारे से अपेक्षाएं हैं, उनके हम सभी इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा ने हमको सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमें अपने स्वयं के ऊपर काम करना है, केवल स्मृति और विस्मृति। इसलिए चिंतन को थोड़ा विशाल करते जाना है, मुरली के 4-5 शब्द ही ले लो, उस पर ही बस सोचते रहो, बार बार सोचते रहो, नहीं एक बार आता फिर बैठो, फिर बैठो, फिर बैठो, एक दिन निकल जाता कोई बात नहीं, सेकेंड डे वो भी निकल जाता छोड़ दो, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक महीने तक कहीं ना कहीं कुछ तो ऊपर वाले पर रहम आएगा, कुछ तो कर दो अभी मैं। जब हम हाथ धो के नहा धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे तो वो ही केवल ले। तो बाबा ने तो हम सबको दिव्य बुद्धि दी हुई है, दिव्य नेत्र दिया हुआ है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए लंबे समय का प्रयास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए धैर्यता चाहिए, हिम्मत चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत रखनी है, ये पथ हिम्मत वाला है। हजारों परिस्थितियां आएंगी, माया नए नए रूप से अपना रूप दिखाती रहेगी, प्रभावित करेगी, फेल भी कर देगी, लेकिन बाबा ने कहा जो शक्तिशाली बच्चे हैं वो हार में भी जीत का अनुभव करेंगे, क्योंकि जो वो हार आने वाली थी वो हार आनी ही थी, वो हार हमको कुछ सिखाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमको पाठ पढ़ा के गई, उस हार से भी हम प्रभावित नहीं हुए। तभी तो कहते हैं दुख और सुख दोनों में स्थित प्रज्ञ, लाभ हारी दोनों में स्थित प्रज्ञ, वो तो परिस्थितियां आएंगी आएंगी, क्योंकि उनके जन कम ही है, उनके बीज हमने बोए हुए हैं, दूसरे ने बोए हुए हैं, और वो खेती तो हमको काटनी पड़ेगी। अब जी जब बीज बोए थे तब तो हमने सोचा नहीं था, कम से कम बाबा ने हम सबको इतने कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी का तो इतना अच्छा ज्ञान दिया है, नेत्र दिया है, हर चीज स्पष्ट है, क्लियर है। इसलिए उसके लिए स्वयं के ऊपर अटेंशन देनी है। तो बीच बीच में हम थोड़ी छोटी ड्रिल भी करेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार सबसे पहले बाबा ने क्या दिया हम सबको, राज तिलक। तो सभी अपने को राज तिलक देंगे, कौन से हाथ से हिसाब से दो, ठीक है, राज तिलक। ये एक नंबर याद रखना, अभी राज तिलक एक नंबर, दो नंबर पवित्रता का ताज, सभी हाथ ऐसे रखो, तीन नंबर समर्थ स्मृतियों की माला, एक नंबर क्या था राज तिलक, दो नंबर पवित्रता का ताज, तीन नंबर समर्थ स्मृतियों की माला। अब वो माला भी तैयार करनी है खुद, खाली एक ये थोड़ा बोल दिया और माला पड़ गई, वो खुद तैयार करनी है माला, समर्थ संकल्पों की, स्वर समान की, 21 या 22 या 42 जितने भी करने हैं। चौथा है आत्मिक दृष्टि का काजल, पांचवा है 22 को बोला ना बाबा ने, तो उसमें तीन बातें आ गई, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है। तो ये हो गया पांच नंबर, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना 6 नंबर, और बुरा नहीं सुनना 7 नंबर। तीन नंबर क्या था करके दिखाओ, हाँ समर्थ समझते के माला, और चार नंबर आत्मिक दृष्टि का काजल, पांच नंबर बुरा नहीं बोलना, 6 7 हाँ उसके बाद आप बोलना नहीं, फिर आपको इशारा ही करना है, ये 7 हो गए पक्का। 8 नंबर मुरली में 3 शब्द और थे, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ठीक है। तो मूल वतन ऐसे करेंगे, मूल वतन, और ये सूक्ष्म वतन, और ये स्थूल वतन, ठीक है। अब 10 हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला राज तिलक, दो नंबर पवित्रता का ताज, तीन नंबर समर्थ स्मृतियों की माला, चार नंबर आत्मिक दृष्टि का काजल, पांच नंबर बुरा नहीं बोलना, 6 नंबर बुरा नहीं देखना, 7 नंबर बुरा नहीं सुनना, 8 नंबर परमधाम, परमधाम से शक्ति खींचनी है कि सारा परमधाम खींच लिया इधरी, और 8 नंबर, 9 नंबर फरिश्ता सूक्ष्म वतन, 10 नंबर, हाँ अभी हम नंबर ही बोलेंगे, ठीक है, तैयार रेडी 1 2 3। तो 1 2 3 इकट्ठा तीनों कैसे करेंगे, चार नंबर, चार, हाँ बोलना नहीं, अभी अभी इशारा ही करना केवल, बोलना नहीं किसी को, 7 नंबर आठ नंबर 10 9 6। चलो पहले कंटिन्यू कर लेते हैं 1 2 से, एक नंबर राज तिलक, महसूस करना जैसे बाबा राज तिलक दे रहा है, ठीक है। दो नंबर पवित्रता का ताज, तीन नंबर ये बैज तो पड़ा ही हुआ, माला तो पड़ी हुई है, चार नंबर आत्मदृष्टि का काजल, पांच नंबर बुरा नहीं बोलना, 6 नंबर बुरा नहीं देखना, 7 नंबर बुरा नहीं सुनना, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर है नहीं, तो अभी पक्का हो गया ना। चलो 5 नंबर, बोलना यार, देखना था बोलना, ठीक है। 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 माला, ये 3, 6 चलो सब पास हो गए। यह एक ड्रिल है, मुरली से शब्द निकालने हैं और उनको अपने कर्मेंद्र से जोड़ लेना है तो याद रहेंगे। आंखों के लिए बाबा ने क्या कहा, अच्छा मन की ड्रिल के लिए क्या कहा, जरूरी थोड़ा बाबा जो अलग ड्रिल अव्यक्त वाणी में सकार मुरली से भी स्वयं की ड्रिल तैयार की जा सकती है। इससे क्या फायदा हुआ, इसके हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन व्यर्थ में नहीं जाएगा, एक नवीनता आएगी, नई रचनात्मक जो सृजनात्मक गतिविधियां क्रिएटिव माइंड अपने आप होगा और छोटी छोटी सारी बातें मुरली में होती हैं। ऐसे मुरली से 100 ड्रिल तैयार की जा सकती है। तो मन को बिजी रखने की आदत स्वयं ही तैयार करनी है, क्योंकि बुद्धि को शार्प रखना है। दिव्य बुद्धि का बाबा ने वरदान तो दिया, लेकिन उसको बाबा कहते कार्य में लगाओ। ऐसा नहीं कि बाबा ने वरदान तो दे दिया और वो काम करना चालू कर देगा, उसको अपना स्वयं के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। उसका दिया हुआ वरदान तभी काम करेगा जब उसके ज्ञान को बुद्धि में बार बार चिंतन करते दौड़ाते रहेंगे, बुद्धि की सफाई होगी, इंटरेस्ट पैदा होगा, फिर पुरानी बातों की तरफ हमारी रुचि अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जाएगी नहीं, माया भी संकल्प आएंगी नहीं। माया भी चाहे दृश्य दिखाई दें, कोई माया भी बोल बोल रहा है, उसका हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मंदिर में मूर्ति के आगे जाके कुछ भी बोलता रहे, कोई गाली भी देता रहे, उसको कोई असर होता है? तो हम भी वही तो मूर्तियां हैं, चैतन्य मूर्तियां हैं। कोई कुछ भी बोलता रहे संस्कार वश परवश होकर, लेकिन हम अपनी स्थिति अचल अडोल बना के रखें, और वे अचल अडोल बनाने के लिए हमको खुद ही नया रास्ता निर्माण करना है, मुरलियों से निर्माण करना है, नए नए रास्ते तलाशने हैं, नए नए तरीके से मुरली को याद करने की एक विधि निकालनी है खुद ही, कि किस तरीके से हमको वो मुरली याद रहे। क्योंकि सब अलग अलग तरीके सुनाते रहेंगे, लेकिन जो हम खुद निकालेंगे उसका नशा अपना ही होगा। सब्जी में दूसरे ने अगर थोड़ा नमक ज्यादा डाल दे तो हम 10 बातें बोल देंगे, और खुद वो डाला होगा तो चुपचाप खा लेंगे, बोल ही नहीं सकते किसी को। इसलिए दूसरे के सुनाए हुए ज्ञान पर हम उंगली उठा सकते हैं, केवल बाबा को छोड़कर, वरिष्ठ दादियों को छोड़कर। लेकिन जब हम स्वयं ज्ञान का चिंतन करेंगे तो एक आत्म संतोष पैदा होगा, एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वयं के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ नया करने की एक नई उमंग नई किरण जगेगी, योग करने के लिए रुचि पैदा होगी, और ये सारी चीजें हमको योग युक्त स्थिति बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसा नहीं खाली हम बैठे तो वो ही भट्ठी है हमारी, निरंतर भट्ठी चलती रहे, क्योंकि हमारा अधिकतर टाइम तो कर्म क्षेत्र पर बीतेगा और कर्म क्षेत्र पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है, और जो हमारा टाइम कर्म क्षेत्र पर है उसी का असर अमृत वेले या इवनिंग नुमा शाम के वक्त होता है। उसमें फिर पावरफुल जो चाहे वो बीज रूप अवस्था का अनुभव कर लो, चाहे परमधाम की स्थिति का अनुभव कर लो, कंबाइंड रूप की स्थिति का, वो तभी होगा जब हमने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की कुछ विधि अपनाई है, कुछ काम किया उसके ऊपर। नहीं तो सुन तो लिया सवेरे हमने प्रदान, लेकिन उस पर हमने काम कितना किया? लौकिक को देखते हुए भी, उनके संबंध संपर्क में आते हुए भी हम उस पर कितना स्थिर रहे, कितना उस निगाह से उनको देखा। भले लौकिक में कोई कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो वो ही भगवान के बच्चे हैं ना, और हो सकता भगवान को उनको उनको हमारे से ज्यादा प्यार करता हो। हम तो ये सोचते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है और बाबा हमारे से ज्यादा प्यार करता है, ऐसा नहीं है। उनमें पता नहीं कौन सी ऐसी विशेषताएं गुण है जो भगवान उनको ज्यादा प्यार करता हो। हमारे दृष्टिकोण में जिनको हम आगे समझते हैं, भगवान के दृष्टिकोण में हो सकता है वो पीछे ही हो। इसलिए तो सारा अंदर का खेल है, इसलिए बाबा ने कहा अंत में ही पता चलेगा इसका। और हमको पता करने की जरूरत क्या है, हम तो केवल अपना पता करना है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, कहां जाना है, क्या देखना है, कैसे व्यवहार में आना है, जो हमें कर्तव्य मिले हैं उन कर्तव्यों को कैसे पूर्ण करना है। तो सोमान का नशा धीरे धीरे चढ़ेगा, तो हर शब्द हमको नवीन लगेगा, उसमें ऊर्जा दिखाई देगी, हर शब्द में ताकत अनुभव होगी। नहीं तो मुरली सुनते हैं एक परंपरा मात्र बनती जा रही है। मुरली बहुत हाई डोज है, वो लेकिन है बहुत सहज है वो, उसके प्रति प्यार हमारा तभी बढ़ेगा। तो गहराई से उस पर चिंतन करना है, उसी की आवश्यकता है। तो सोमान धीरे धीरे हमारी रगों में समाता जाएगा, तो फिर उसके बाद ये हमारी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होना आरंभ होगा। जब तक कर्मेंद्रियों में ज्ञान नहीं समाया है तो स्वराज्य अधिकार का हम नशा बोले सोमान का रटते रहे, लेकिन कर्मेंद्रिय हम बार बार धोखा देंगी, कर्मेंद्रिय बार बार चंचल होंगी। जब तक सोमान का नशा नहीं चढ़ा तो स्वराज्य अधिकार की सीट हमारी हलचल में आती रहेगी, बार बार कर्मेंद्रियां धोखा देंगी। तो पहला सोमान का नशा, दूसरा है स्वराज्य अधिकारी का अधिकार है। बाबा ने हमको अधिकार दिया ये कि कर्मेंद्रियां तुम्हारी क्या है, ये तुम आत्मा राजा हो। कर्मेंद्रियां क्या है, ये कर्मचारी है। ये राजा अगर अपनी अथॉरिटी के सम्मान में स्थित नहीं रहेगा, विस्मृत हो जाएगा कि मैं राजा हूं ही नहीं, तो कर्मेंद्रियां भी क्या धोखा देती रहेंगी बार बार। तो हर एक सम्मान हमको राजाई ठाठ वाठ हमारे में वो पैदा करता है। राजाई माना, राजाई ठाठ वाठ माना आत्मिक स्मृति, परमात्म स्मृति का नशा, परमात्म सम्मान का नशा, परमात्म प्यार का नशा, परमात्म सेवा का नशा। हर चीज में वो हमारी कर्मेंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी। बाबा कहते सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कौन है, सबको पता है, कितना पक्का हो गया है। अब ये सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है ये, क्योंकि हमारी एनर्जी के आवागमन का द्वार ये आंखें हैं। अगर भगवान से हम ताकत लेते हैं तो इन नयनों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से। अगर हमारी शक्तियां जाती हैं तो आंखों के माध्यम से। तो इन आंखों को सवेरे सवेरे इतना परमात्म शक्तियों से भर लेना है कि पूरा दिन सबको परमात्म शक्तियों का एहसास होता रहे, अनुभूति होती रहे। परसों वरदान था ना अनुभूति वाला, कौन सा था, बहुत अच्छा था, कौन सा था, बात मत पूछो, इतना अच्छा था। सच्चे आत्मिक सुने की अनुभूति कराने वाले, करने नहीं कराने वाले। डैश डैश बाबू क्या नहीं, मर्जीवा तो पहले था, मास्टर स्नेह के सागर। तो सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति, पहले तो स्वयं को स्वयं के साथ स्नेह करना है, स्वयं अनुभव करना है लंबे समय तक। और वो आत्मा केवल सोचने की बात नहीं, मैं आत्मा हूं, वृत्ति है हमारी वो, कि सभी आत्माएं हैं, चाहे वो बीके चाहे वो गैर बीके कोई भी है, सब अपने ही है। कहीं ना कहीं हमारा ये दृष्टिकोण दूरियां बनाकर रखता है। नहीं, संसार की हर आत्मा से प्यार करना सीखना है, क्योंकि संसार की हर आत्मा भगवान की संतान है, वो उसकी रचना है ये। तो जैसा उसका सबसे प्रति प्यार है, ऐसे हमारा भी सबके प्रति पूरा प्यार है। भले बीच बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वो अलग बात है। वो होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा एहसास तो होगा ना, नहीं तो नमक और मीठे का पता कैसे चलेगा। और वो होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि अहम टूटता है हमारा, जो अंदर थोड़ा सा अहम पैदा हो जाता ना कि हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है। जब थोड़ी सी ऊपर नीचे स्थिति परिस्थिति आती है और अवस्था नीचे उतर जाती है तो अहम सारा गिर जाता है, सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। इसलिए बीच बीच में थोड़ी हार भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हारते रहे हम। जैसे आज बाबा ने कहा, भले जितने बुजुर्ग हो गए हैं या बीमार हैं, लेकिन खटिया पर बैठ के सो के भी सुन सकते हो। तो बिना बीमारी के भी कोई कोई सुनते होंगे, बाबा ने सीधा तो नहीं बोला, वो तो बाबा को सुनाने का तरीका होता है। डायरेक्ट थोड़ा बोलेगा, नहीं सामने होगा दिल शिकस्त हो जाएगा। इसलिए बाबा जैसे बताते ना, अगर बहू को बोलना हो तो किसको बोलो, बेटी को बोलो, सबको पता है। क्योंकि सभी उसी अवस्था से गुजरे हुए हैं। अनुभव ही आत्मा में बैठी है। तो बाबा भी हम सबको ऐसे बताते हैं, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे तीर, ऐसे कहते कि नहीं। तो बाबा का भी कई बार ज्ञान ऐसे होता है, मुरली में सबके प्रति बाबा सुना देते हैं, डायरेक्ट थोड़ा बोलेगा। तो बाबा के ज्ञान बड़ा रमणीय है, उसको समझना है, उसको स्पर्श करना है, उसका स्वाद अनुभव करना है। जब जितना हम उस ज्ञान का चिंतन मनन गहराई से करते रहेंगे, उस ज्ञान के प्रति हमारा प्यार बढ़ता रह जाएगा, तो कर्मेंद्रियां भी उसी अनुरूप कार्य करेंगी। इनको ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आंखें बुरा नहीं देखना है, ये मुख बुरा नहीं बोलना है, हे कान बुरा नहीं सुनना है। आखिर कब तक एक एक कर्मेंद्रिय को ठीक करते रहेंगे? ज्ञान हमारे संस्कार हैं, प्योरिटी हमारे संस्कार हैं, शक्तियां हमारे संस्कार हैं, जो भी आत्मा के सात गुण हैं, जो भी परमात्मा के सारे गुण हैं, वो सब हमारे भीतर ही हैं। वो हमको क्या बनाने आया? आप समान बनाने के लिए आया हुआ। माना हम थे तभी तो बनाने आया ना, और थे नहीं, हम हैं पक्का। हाँ, सारे गुण दिख रहे हैं, एकदम 32 गिरने चमक रही हैं मस्तक पर, सबके मस्तक पर। कौन सी 32 गिरने? 32 गिरने कौन सी हैं? एक तो दांत ही 32 है, ये नहीं जो शिबा वाली किरण है ना, ये भी 32 ही है ऊपर, तो इसके ऊपर 32 गुण लिखे हैं ना, यहां नहीं लिखे हुए हैं, कैलेंडर 32 गुण वाला है वो, तो याद है किसी को? किस लिए याद करने, जरूर थोड़ी है। ओ देखो पीछे माता जी का हाथ उठा रहे, 32 के 32 गुण याद करने हैं, ये है भट्टी। ज्ञान केवल कापियों तक सीमित नहीं रहे, कुछ तो एक प्रण करना है, जो हमारे पास परमानेंट हमारे हाथ में प्रॉपर्टी हो। अगर बाबा अभी आ जाए और बोले बच्चे तुम 30 साल से ज्ञान में हो, और पहले दिन तुमको मैंने ये शिबा वाला 32 गुण वाला कैलेंडर दिखाया था, तुम केवल यही सुना दे और मैं तुमको एकदम बढ़िया ताज दे दूंगा और बड़ी सीट दे दूंगा, और 30 साल में हमने 32 गुण भी नहीं याद किए, तो कैसा लगेगा फिर? तो कितना पश्चाताप होगा, कम से कम 32 गुण ही याद कर लेते हम, कोई भरोसा थोड़ा बाबा का कभी भी किसी तरीके से पेपर ले ले। तो ज्ञान जो संस्कार है हमारे, उनको थोड़ा गहराई से समझना है, अपना बनाना उसको, नहीं तो हमारा जो टाइम है, जो सबसे अमूल्य पूंजी हमारे हाथ में, जो टाइम संगम युकस में, जो बावन का एक एक सेकंड कीमती है, ये सारा समय हमारा ऐसे निकलता रहेगा, और फिर अंत में क्या कहना पड़ेगा, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमारे पास इतना अथाह खजाना है, इतना बाबा ने बेहद का वर्षा दिया है, उस स्वर्ग का वर्षा तो बड़ा फीका है, ये मीठा वर्षा है अगर इसकी गहराई में उतरेंगे तो, इसमें छलांग मारेंगे तो। क्योंकि लंबे समय से हमें पुरानी आदतें हमको बांध के रखती हैं, वो खींचती हैं बार बार, लेकिन जब एक बार ज्ञान के संस्कार पड़ गए, फिर वो आदतें भले खींचेंगी, लेकिन हम उनसे सेकंड से डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि एक बार रस पड़ गया, एक बार किसी ने अच्छा सा आम खिला दिया, तो फिर बार बार आकर्षित होंगे कि नहीं? तो एक बार हमको रस बैठ गया ज्ञान के चिंतन करने का, तो योग युक्त अवस्था अपने आप ही बनी रहेगी। योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले, बाबा ने कहा तुम युद्ध करने वाले नहीं हो, योग युक्त अवस्था वाले हो। कब तक युद्ध चलती रहेगी? और माया भी विदाई लेने आए, बाबा कई बार कहते हैं कि माया भी विदाई लेने के लिए आ रही है, लेकिन तुम बच्चे माया को चाय पिलाएं पानी पिला देते हो, समय भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है जो आपकी रचना है, कि मेरे रास्ता कहां पहुंचे हैं। प्रकृति भी बार बार देख रही है, तो ढिलाई तो केवल हम सब की तरफ से ही है। अब ये बताओ 5 नंबर क्या था? बुरा नहीं बोलना है। अच्छा 2 नंबर क्या था? 3 नंबर क्या था? काजल नहीं था, 3 नंबर माला थी। 4 नंबर? 3 नंबर माला ही थी, ठीक है, वो देख रहे उधर भरोसा रखो अपने ऊपर, किसी पर कोई विश्वास नहीं करना है, इस संसार में कोई अपना नहीं है। और 6 नंबर क्या था? बुरा नहीं देखना। 7 नंबर? नौ नंबर, आठ, तीन, दो, एक। हाँ तो दस पक्का हो गए। ऐसे मुरली से रोज बीस निकालने हैं, और सारा मुरली के अंदर ही होता है। लेकिन होता क्या, हम मुरली के हम बैठे तो होते हैं वहां, लेकिन हमारी प्लानिंग अगली चलकी होती है कि मुरली के बाद हम क्या करेंगे जाके। जहां हम बैठे हैं वहीं बैठ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट माइंड में रहना है। जो टाइम है हम इस समय क्लास कर, मतलब क्लास के बारे में सोचना है, मुरली सुन रहे हैं मुरली के बारे में सोचना है, नहीं तो हम फ्यूचर का सोच रहे हैं या पास्ट की बातों को कि हमको जाके क्या करना है, भविष्य या फिर पास्ट, फ्यूचर या पास्ट, इन दो के बीच में प्रेजेंट जो हमारे पास गिफ्ट है इसको हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो यही सोचना कि मुरली सुनने के टाइम बस मेरे अभी अंतिम 45 मिनट है जिंदगी के, इसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, मानो सो नहीं जाना जाके, केवल जिंदगी 45 मिनट ही है बाकी है। अब जो करना मुझे ज्ञान योग पूरा इसी में संपूर्ण संपन्न बन जाना है, और समय का भरोसा तो है नहीं, एक सेकंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता भी दो मिनट के बाद ही कुछ हो जाए, यहाँ के हम बाहर जाए नहीं, कोई है खबर किसी को, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ज्ञान को बड़ा रमणीकता से गंभीरता से अपने संस्कारों में समाने का पुरुषार्थ करना है, और खुशी नहीं छोड़नी है कभी भी। भगवान के बच्चे और उदास इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मुरली के स्टार्टिंग के गीत क्या सुना, खुशियां बांटो, हम खुशियों के सागर के बच्चे हैं, खुशी के देवता बाबा कहते, तुम खुशी की देवियां हो, दूसरों के दुख हरने वाले हो, दुख हरता सुख हरता हो। ये 32 गुण में से 26 नंबर है उस कैलेंडर में, वो सारे याद करने हैं, याद करेंगे सब। हाँ तो कर देते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, रियली करेंगे ना आपको बड़ी खुशी होगी। और जब योग में थोड़ा सुस्ती आए ना, वो 32 गुणों को घुमा दो, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि उनमें परमात्म शक्तियां समाई हुई हैं, ऊर्जा समाई हुई है, परमात्म प्यार समाया हुआ है। हम तो कई दफा ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि लंबे समय से ज्ञान में चले तो एक सेकंड में उड़ जाएगा, पुरुषार्थ करना पड़ता है। बड़े दादी जी ओम शांति, उनमें कहते थे, कई बार पूछते थे, दादी जी आप तो योग सहज लग जाता होता है, एकदम सहज लग जाता होगा। दादी कहती ऐसे थोड़ा नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है हर चीज का, बिना पुरुषार्थ के थोड़ा नहीं होता है। लेकिन लंबे समय का अभ्यास है तो फिर नेचुरल नेचर बन जाती है, नहीं तो कई बार दवाई खाई है, थकावट हो गई है, नींद आना स्वाभाविक होती है। लेकिन जब बाबा के गुणों का चिंतन करेंगे, वो माला पहन लेंगे, ये सोचना 32 गुणों की माला इधर पहन रहा हूं मैं, वो 32 के 32 गुण एज इट इज याद करने हैं। स्कूल के बच्चे हैं हम, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस्ता हमारे हाथ में है, कापी पेंसिल भी है, तो फिर बच्चों जैसा संस्कार भी तो होने चाहिए। छोटे बच्चे कितने अबोध होते हैं, कितनी सीखने की ललक होती है, कितनी खुशी उमंग सा होता है, कॉपी पेंसिल कितना प्यार होता है उनका, कैसे किताबों को वो ऊपर से जिल्द वगैरह लगा के रखते हैं, सजा के रखते हैं। तो हम भी तो गॉडली स्टूडेंट हैं, संसार के बड़े से बड़े स्टूडेंट हैं, बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। इतना ऊंचा टीचर है जो हमको पढ़ाने आया है, केवल 5000 वर्ष में थोड़े समय अभी पढ़ाएगा, तो उसका हमको कितना कदर होना चाहिए। बाबा कहते प्यार में तुम्हारे आंसू आ देने चाहिए, आज था ना मुरली के लास्ट में, वो आंसू कहां फिर चले जाएं, मोती बन के डिब्बी में। तो ये ज्ञान बड़ा रमणीक है, बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, इसलिए इस ज्ञान का मजा लेना है। टाइम भी हो गया है, ओम शांति। पांच नंबर क्या था, अच्छा चुप रहने का, ठीक है ओम शांति।